शांति। अभी हमारे सामने आदरणीय मोहन भाई जी पधारे हुए हैं। हम सभी उनका एक हाथ से ला करके अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। अपने आज से 50 साल पूर्व इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के ज्ञान भी लिया, उसके बाद में बाबा के अंग संग भी रहे और उसके भी बाद में जब भी विंग्स की स्थापना हुई, शुरू में 5 विंग्स थी, उसमें से एक विंग जो है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग, उसकी स्थापना में आप निमित्त बने। हाल में आप साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपने अनेक एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन भी निकाले हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन्स भी निकाले हुए हैं। अनेक बुक्स आपने लिखी हुई है। आप में एक विशेषता है क्रिएटिविटी की। आपने अगर साइंटिस्ट विंग के कॉन्फ्रेंस को देखा होगा तो उसमें देखा होगा अलग अलग विषय पर हमेशा कॉन्फ्रेंस होती रहती है, बहुत सारी क्रिएटिविटी आप में है। तो अभी आज हमारे समक्ष मौजूद है और हमें हमारा जो ज्ञान सरोवर बना हुआ है एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, उसके आप डायरेक्टर के रूप में जो मेन जो विंग्स बनी हुई है, विंग्स का जो है पूरा ही आपके आप संचालन करते हैं। और आज का हमारा जो विषय है वफादार और साथ में बाबा का राइट हैंड कैसे बने, उस पर हमें कुछ प्रकाश डाल करके हमसे कुछ बातें करेंगे आदरणीय मोहन भाई जी।
ओम शांति। वैसे तो सारे दिन में कई बार ओम शांति हम लोग बोलते हैं, लेकिन अभी हम लोग एक बार ऐसे ओम शांति बोलेंगे जैसे यज्ञ के शुरुआत में, तब तो केवल ओम ही बोला करते थे, लेकिन हम लोग जैसे शुरू में बोला करते थे उस रीति से बोलेंगे। क्या रीति है? अंदर गहरी श्वास लेकर के और फिर लंबे समय तक हम ओम शांति का उच्चारण करेंगे। इससे दोनों बातें होती हैं, एक तो लंग्स में फेफड़ों में भी हवा पूरी भर जाती है और उसके बाद साथ ही साथ मानसिक रीति से भी हम ओम शांति के भाव में स्थित हो जाते हैं। तो हम लंबी श्वास लेकर के फिर धीरे ओम का उच्चारण करेंगे। बाबा का आज्ञाकारी और राइट हैंड कैसे बने, तो इसमें किस बाबा की बात है? शिव बाबा की या ब्रह्मा बाबा की? जो शिव बाबा बोलते हैं वो हाथ खड़ा करें, और जो ब्रह्मा बाबा बोलते हैं वो हाथ खड़ा करें, और जो बाप दादा दोनों साथ, फिर भी हाथ किसके हैं? शिव बाबा के या ब्रह्मा बाबा के? ब्रह्मा बाबा के, क्योंकि गायन भी है ना, ब्रह्मा की सहस्त्र भुजाएं गायन है। और शिव बाबा को तो की भुजाओं की बात नहीं रहती, क्योंकि वो तो निराकार है और साथ ही साथ वो तो सर्वशक्तिवान है। वो जब चाहे जिसकी बुद्धि को उस अनुसार मोल्ड कर सकता है, जो हमने यज्ञ के शुरू से सुनाई है। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हो जाते थे, विशेष रूप से अलग अलग रीति से उनके अंदर भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, इंट्यूशंस, जो अंदर की बात है, उस बात को पकड़ करके वो करते थे। तो ये सब पार्ट तो ज्यादातर भक्ति मार्ग में द्वापर युग से चला है, शिव बाबा के प्रेरणाओं की बात जिसे कह देते हैं। हालांकि बाबा कहते हैं कोई प्रेरणा से संगम युग में कार्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां तो ब्रह्मा बाबा है, दादियां हैं, तो उनके थ्रू। लेकिन भक्ति मार्ग में कोई नहीं होता द्वापर युग से, वो सारा कार्य इंट्यूशंस के द्वारा, प्रेरणाओं के द्वारा होता है। तो जब से ब्रह्मा का जन्म हुआ, ब्रह्मा का, दादा लेखराज का नहीं, ब्रह्मा का जन्म हुआ, तब से राइट हैंड की बात वो कर्तव्य के अंदर आई। क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है हाथों से किया जाता है, और शुभ कार्य के लिए कहा जाता है राइट हैंड ही है। तो इस कारण से जब हैंड्स की बात करते हैं तो ज्यादातर यहां साकार में ब्रह्मा बाबा की ही बात है। और अभी भी भले साकार में ब्रह्मा बाबा न हो, जो भी निमित्त आत्माएं हैं, दादियां हैं, वरिष्ठ दादा हैं आदि, तो उनकी भुजाएं माने सहयोग, भुजा सहयोग का भी प्रतीक होती है। तो इस कारण से ये सहयोगी किस प्रकार से बने। और सबसे अच्छा उदाहरण यज्ञ में कौन सा है जो सहयोगी होकर चला और सफल हुआ? कौन है? हाँ? कोई दादी जी, कोई मामा, और इससे आगे भी कौन? खुद सबसे पहले ब्रह्मा बाबा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी साकार में जो सुना है हम सबने, ब्रह्मा बाबा तो पवित्र, तो प्रवृत्ति तो बाद में हुई, प्रवृत्ति में था जब दादा लेखराज जब तक थे। और उनकी जो पूरी की पूरी इतिहास, जीवन कहानी हम सबने पढ़ी है, तो उसमें आता ही है कि किस प्रकार से बहुत भक्ति में था बाबा, दान करता था, कितना ईश्वर भक्त था आदि आदि, गुरु के प्रति कितनी भक्ति थी। तो सबसे पहले पहले, और जब हम बात करते हैं भावनाओं की और इन सब की, राइट हैंड की, तो राइट हैंड का मतलब क्या है? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से राइट हैंड का मतलब क्या है? किससे गवर्न होता है राइट हैंड? राइट हैंड जो होता है ना, हाँ, लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। तो यानी कि जो लॉजिक है, जो बात मैथमेटिकल है, भक्ति मार्ग में भी आप देखो लौकिक कर्तव्य सब लेफ्ट पार्ट से गवर्न होते हैं। लेकिन जो भी भक्ति में आध्यात्मिक बातें होती है, हुई है, चाहे नरसिंह मेहता का लो, मीराबाई का लो, किसी का भी जीवन कहानी आप पढ़ लो, वो ज्यादातर इंट्यूशन से गवर्न हुई है। उनको एकदम प्रेरणा जैसी आई, उन्होंने समाज का ख्याल करते, यानी लेफ्ट पार्ट से अगर चलते तो कोई समाज की रूढ़िवादिता को तोड़ नहीं सकता था। ब्रह्मा बाबा का ही देखें तो ब्रह्मा बाबा का क्या था, सबसे पहला इवेंट कौन सा था जिसने ब्रह्मा बाबा को परिवर्तन किया? वो भक्ति मार्ग में थे और सबसे पहला इवेंट उनके जीवन का कौन सा था? साक्षात्कार भी बाद में हुए, उनके जीवन का सब हम सा, हाँ, गुरु की सभा में वो बैठे हुए थे और सभा में बैठ करके वो उठ करके चले गए अंदर। तो पहला इवेंट तो ये था, क्योंकि अगर लेफ्ट पार्ट से गवर्न होता तो वो यही सोचते, अरे गुरुजी तो कथा कर रहे हैं, मैं कैसे उठूं जाऊं। नहीं, उस समय उनके मन में जो आया एकदम प्रेरणा सी उठी, ये तो क्या हुई वही बता सकते हैं, लेकिन जैसा जीवन कहानी में लिखा हुआ है उनको अंदर ही अंदर एकदम ऐसा हुआ जैसे उन्हें मैग्नेटिकली कोई खींच रहा है, और वो उठे और जैसे कोई उठा के उन्हें ले जा रहा है। ये सब इंट्यूशन की और वो बातें हैं राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन के। तो इस कारण से तभी हम कहते हैं हार्ट एंड माइंड, हार्ट लेफ्ट पार्ट को होता है, इसीलिए राइट पार्ट से जो गवर्न होता है। दिन भर तो हम लेफ्ट पार्ट से, यानी कि जो हमारा लॉजिकल बातें हैं और जो सामाजिक बातें हैं उस रीति से हम करते हैं, लेकिन उस समय बाबा को वो हुआ और बाबा उठ के अंदर गए और अंदर जाके अपने कमरे में बैठ गए, और उस समय फिर बाबा की लौकिक पुत्र वधु जो थी वो भी गई और उसने देखा, अरे बाबा तो कभी भी गुरु का इस तरह मतलब निरादर तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी एक एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस से अलग है, गुरु कर रहा है कथा और अंदर जाना बाबा के गए, क्यों बाबा की क्या तबीयत ठीक नहीं है। और जब वो गई और उसने देखा, वो सब तो इवेंट हमने पढ़ा है, वो उनके जीवन का टर्निंग इवेंट था। और टर्निंग इवेंट वही होता है जो इंट्यूशन से ही गवर्न, मतलब आध्यात्मिक रीति से। उसके बाद तो हम सब जानते हैं किस प्रकार से बाबा का पूरा जीवन परिवर्तन हुआ, बाबा को नाम मिला प्रजापिता ब्रह्मा आदि आदि वो सब बातें। तो अभी हम सब बच्चे भी जो हैं, तो लॉजिक से तो हमने सारा इस जन्म में भी और 63 जन्मों में भी बहुत काम किया, जितने कार्य किए वो लेफ्ट पार्ट से गवर्न होके किए, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम जो बाबा हमें प्रेरणा देता है, टच करता है, जो बाबा कहते हैं उसको हम कितना कैच करते हैं, क्योंकि ये कैच करने की प्रैक्टिस ही हमें ना बाबा का पूरा राइट हैंड भी बनाएगी, आज्ञाकारी भी। छोटी छोटी बातों में तो हम बन जाते हैं आज्ञाकारी और वफादार, फरमान बरदार, और जो बाबा ने कहा है राइट हैंड, राइट हैंड है, मददगार है, तभी तो यहाँ पर आज इस छोटी भट्टी में आए हुए हैं। आते ही अधिकतर वो हैं यहाँ पर पांडव भवन की छोटी भट्टी में, जो कि यज्ञ के रिलेटिवली क्लोज होते हैं, जिन पर बहनों को कॉन्फिडेंस होता है, जिन्होंने प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में अर्पण किया हुआ है मानसिक रीति से, वो ही ज्यादातर इस भट्टी में आते हैं। तो ये अभी हमें ये आवश्यक क्यों है, क्योंकि बाबा ने कहा है अंत में जब चारों तरफ हाहाकार होगा, जब प्राकृतिक आपदाएं होंगी, 5 तत्व अपना भयंकर रूप दिखाएंगे, उस समय क्या होगा, कोई भी ये वायरलेस सिस्टम, मोबाइल, ये सब कुछ काम नहीं करेगी। उस समय कौन सा सिस्टम काम करेगा, वॉइसलेस सिस्टम, यानी जितना हमारी बुद्धि निर्विकारी होगी और ऑटोमेटिकली हमारे पांव उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। और वो किनके पांव उधर बढ़ेंगे, जो उस समय बाबा की टचिंग को कैच कर सकेंगे। तो बाबा की टचिंग जो होगी उसको कैच करके, और हमारा तो अपने जीवन में कई बार का अनुभव है, बहुत बार का, कि कई बार ऐसे टचिंग होती है, उसमें बस एक डिफिकल्टी आती है, हम सोच नहीं पाते, कंफर्म नहीं कर पाते ये बाबा की टचिंग है या मेरा अपना संकल्प है, क्योंकि अपने संकल्प तो काम करते ही हैं। तो इस कारण से बाबा ने कहा उस समय बिल्कुल क्लियर कट टचिंग होगी, और जो बच्चे टचिंग को कैच करेंगे ऑटोमेटिकली उनके पांव उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, क्योंकि भगवान बंधा हुआ है अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। किन बच्चों की, बच्चे तो हम सभी हैं, इतने सारे 9 लाख और लाखों और बढ़ेंगे बच्चे, बहुत होंगे, लेकिन उन बच्चों की सेफ्टी के लिए बाबा बंधा हुआ है जिनका तन और मन वो वॉइसलेस होगा। मन से हम कह दें, मन का किसको क्या पता, मन मेरा निर्विकारी है, कोई विकार नहीं, लेकिन तन से कोई भी चीज रिफ्लेक्ट होती है, तो हम देखें कि तन के द्वारा भी कोई भी, तन माने कर्म के द्वारा कोई विकार के वशीभूत तो नहीं हुआ, तन की कर्मेंद्री मुंह के द्वारा कोई ऐसा कटु वचन कह दिया, कोई ऐसी बात, वो भी एक विकार है। दुख देने के, दुख दिया तो दुख हो मरेंगे, सेफ्टी की तरफ पांव बढ़ेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली दुख हो जाएगा प्राकृतिक आपदाओं के कारण से। इसीलिए बाबा ने कहा है इसका अभ्यास बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम हम कैच करें और उसको कन्फर्म करें। जब हमारा विज्ञान भवन में 2004 में कॉन्फ्रेंस हो रही थी सेकंड, मुझे याद आती है वो घटना, तो उससे एक दिन पहले ही बहुत बड़ी सुनामी आई थी। हमारा 26-27 दिसंबर को था, 25 या 26 दिसंबर को बहुत बड़ी सुनामी आई थी, पूरे वहां से शुरू हुई और भारत तक आई, चारों तरफ फैली सुनामी, कितना भयंकर विनाश, हजारों लाखों आत्माएं चली गई उसमें, वो तो आप सब जानते हैं। तो अगले दिन जब हमारा उद्घाटन था, उसमें भारत के होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस्टर जायसवाल वो आए थे, और उन्होंने ये बताया था, उस समय ये बताया गया था कि देखो ये टेलीपैथी, क्योंकि हमारा योग एक तरह से टेलीपैथी है, योग माने मन से नियंत्रण, और टेलीपैथी लौकिक में बताते हैं अपने मन के भाव आपने किसी को भेजे, दूसरे ने कैच किए, दूसरे ने भेजे, आपने कैच किए, ये है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। और हम योग को भी कहते हैं मेंटल योगा, दिस इज नथिंग बट द टेलीपैथिक कम्युनिकेशन विद द सुप्रीम, परमात्मा के साथ हमारा ये मन का जुड़ाव है। तो ये बताया कि देखो टेलीपैथी भारत की है, पुराने जमाने के ऋषि मुनि आदि बस मन से ये ईश्वर से बात करते थे, कोई भी बात, इतने वो पावरफुल होते थे मन का, तो जंगल में बैठे हैं वहीं पर उनका भोजन आ जाता था, वहीं पर ही सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो जाती थी। तो उन्होंने बताया कि ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अमेरिका ने जैसे हाईजैक कर लिया भारत का, और अमेरिका ने ये सोच करके कि अंत समय ऐसा परिस्थिति आ सकती है जब दुश्मन के कंट्री अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को फेल कर दें, जैम कर दें, और उस समय फिर अमेरिका क्या करे, किसी का भी कम्युनिकेशन सिस्टम बातचीत करने का ये अगर काम करना बंद कर दे किसी भी कारण से, तो उस मिलिट्री की, उस देश की हार निश्चित है। अमेरिका ने भी जो बहुत बड़े सद्दाम हुसैन का था, बहुत सब उसका तैयारी थी युद्ध की, लेकिन सबसे पहला काम उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर दिया, और कोई भी मिलिट्री कमांडर या कोई भी आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सके, अल्टीमेटली वो लोग हार गए। तो अमेरिका ने यह सोचकर ही कोई दुश्मन कंट्री हमारे सिस्टम को जाम ना कर दे, तो उन्होंने क्या किया, पिछले करीब 20-25 साल से वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या बहुत कि जो भी ट्विंस अमेरिका में ट्विंस जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनको अमेरिकन गवर्नमेंट गोद ले लेती है, और पेरेंट्स की कंसेंट से या वहां भी रहे लेकिन उनका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, उनको एक जैसा दोनों को खाना पीना रहना कपड़े, भाई भाई हो चाहे भाई बहन हो चाहे बहने बहने हो, वो तो सारा का सारा एक जैसी पढ़ाई एक स्कूल में, एक जैसा वातावरण बाहरी भी वो देते हैं देखते हैं, तो उससे क्या होता है उनका सोचने का ढंग भी एक जैसा हो जाता है। अभी भी दुनिया में कहीं भी जुड़वा बच्चे होते हैं, शक्ल सूरत से काफी मिलते जुलते भी होंगे लेकिन सोचने का ढंग, हैबिट्स, वो सब अलग अलग भी हो जाती है, उल्टी हो जाती है एक दूसरे से कम्प्लीटली। लेकिन जब उन्हें जिंदगी में वातावरण वैसा मिलता है तो बिल्कुल उनके धीरे 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 सोचने का, रहने खाने पीने का सारा एक जैसा हो जाए, एक जैसा ही खाना देना, एक जैसी क्वांटिटी देना। तो ये अमेरिकन एक जर्नल, रिटायर्ड जर्नल ने बताया था कि ऐसा वहां पर वो करते हैं, उन्होंने उसको रिफर किया था। तो ऐसा, और अभी तक उस समय 2004 तक जब ये बात हुई थी तब तक ऐसे वो लगभग 70 ट्विंस को तैयार कर चुके थे, अभी तो और भी ज्यादा 150-200 ज्यादा भी हो गए होंगे, और उन्होंने बताया कि उन बच्चों को हम लोग ना ऐसा मेंटली ट्रेंड किया है कि एक शोर पर रहता है, दूसरा समुद्र के अंदर तक जाता है, तो बिल्कुल एक जैसा जो वो उसे कमांड करता है, तुम नॉर्थ 25 ईस्ट की तरफ मुड़ो, तुम ऐसा करो ऐसा, और उधर वो जो शिप के अंदर है डीप इनसाइड, वो उसको वैसा ही कैच करता है, फिर वहां से वो बोलता है, ये कैच करता है, और उसको फिर वो लोग रेगुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वायरलेस, उनसे चेक करते हैं। तो उसने बताया था कि हमने देखा कि उसमें अंदर लगभग 80% तक एक्यूरेट, क्योंकि रेगुलर मीन से कम्युनिकेशन वायरलेस सिस्टम से चेक करा तो इतना तक एक्यूरेसी कि यहां से वो मानसिक मेंटल वेव्स भेज रहा है, कमांड भेज रहा है और दूसरा वैसा पकड़ रहा है। तो ये है जब मनुष्य मनुष्य आत्माओं के बीच में हमारे ही इस पृथ्वी पर ऐसा हो सकता है, तो क्या हम लोग सुप्रीम पावर परमात्मा ने जो कहा है वो नहीं हो सकता? लेकिन इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। तो इसीलिए हम परफेक्ट वफादार ईमानदार जो बाबा ने कहा है और जो ब्रह्मा बाप के राइट हैंड, राइट हैंड माने क्या, कोई किसी का राइट हैंड कब बोलते हैं, जब उसकी बात दूसरा पूरी पूरी मानता है। और कई बार ये होता है बात ही नहीं मानता, मानो एक व्यक्ति याद कर रहा है कोई मीन नहीं है और तुरंत ही दूसरा आ जाए, अरे अभी अभी तो मैं आपको याद कर रहा था, आप तुरंत आ गए, कई बार होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, तो वो उस समय हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी मेंटल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो इमीडिएटली वो पकड़ के जैसे आ जाता है। तो भाव ये है कहने का कि हमारे सामने रोल मॉडल एक ब्रह्मा बाबा है, उस समय ब्रह्मा बाबा जो है शिव बाबा का जैसे ना बना, शिव बाबा जो कहता था ब्रह्मा बाबा करता गया, और उस रीति से ब्रह्मा बाबा ये आज है जो इतने कम समय में संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को, एक ही आत्मा है अभी तक पूरे यज्ञ में, कितने साल में वो संपूर्ण बने, 33 वर्ष के अंदर, 33 ईयर्स के अंदर, और अभी तो देखो कितने हैं, मैं भी 50 साल से ज्यादा हो गया ज्ञान में, 80 साल तक के हैं जब से यज्ञ बना है। तो भाव क्या है कि बाबा का जरूर कुछ ना कुछ पुरुषार्थ में हम सबसे ऐसा अलग रहा होगा, तो फास्ट एकदम चला गया और 33 ईयर में ही संपूर्ण बन गया। तो वो उसमें एक यही मुख्य बात कि जो जो शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने कहा ममा ने किया, करते चले गए। तो इस रीति से अब हम अपने पर आए कि हम कैसे ऐसी अवस्था को प्राप्त करें जो कि, क्योंकि अल्टीमेट चीज जो देखी जाती है वो एंड रिजल्ट देखा जाता है, जो रिजल्ट हम चाहते हैं। मानो हमारे यहां बहुत बड़ा मेला, बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो जो होने वाला है उसकी हम सब तैयारी करते हैं, और जब अंत में जितनी सफलता मिली ना, बस उस अनुसार हम अपने को उसको गेज करते हैं कि किस कितनी हमारी मेहनत सफल रही। मेहनत बहुत करी, मानो कोई स्टूडेंट है, बहुत मेहनत करी उसने पढ़ाई में, बहुत 15 घंटे पढ़ता था बहुत, लेकिन रिजल्ट अगर अच्छा नहीं हुआ उस मेहनत का फायदा क्या हुआ? जरूर मेहनत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी थी, तो अपना ऑडिट वो करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम कि कितने तक, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रिजल्ट ऑब्टेन करना है। कौन सा रिजल्ट? जो बाबा ने कहा है अंत मते सो गति, अंत में जब प्राण इस तन से निकले उस समय कोई भी और याद ना आए, उस समय बस मैं और मेरा बाबा। और उसमें एक चीज और बहुत हेल्प करेगी, कौन सी? कि अंत में जब हमारे प्राण भी निकले ना, तो वो हमारी इच्छा से, भीष्म पितामह का जो गायन है, हम चाहें जब तब हम, हाँ बाबा अब मैं आपके पास आ रही हूं आत्मा, अब इस शरीर में मेरा पार्ट पूरा हुआ, और सब तरफ से जब बुद्धि योग कटा हुआ होगा ऐसा, तो फिर वो हमें हेल्प करेगा। अगर ऑल ऑफ ए सडन हमारे कई काम पेंडिंग हैं, बचे हुए अधूरे हैं, मुझे ये भी करना है ये करना है, उस समय सडनली अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिरी और हमने शरीर छोड़ दिया, तो वो तो अंतमते सुगति होगी नहीं। तो इस कारण से बाबा ने जो किया, और इसके रिफरेंस में मैं कुछ वो घटनाएं सुनाना चाहता हूं बाबा के अंतिम दिनों की, क्योंकि मुझे एक सौभाग्य मिला है। ब्रह्मा बाबा के साथ तो हम काफी 62-63 से कई बार मिले बाबा से, लगभग 10-12 बार मिले होंगे कम से कम, लेकिन मुख्य बात जो है 17 और 18 जनवरी को हम यहां मधुबन में ही थे, और उन दो दिनों में हमें ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था को देखने का मौका मिला। तो उस समय जो हमने देखा वो हमारा लक्ष्य हो जाना चाहिए कि हम भी वैसा बने जिससे ब्रह्मा बाबा ने जो कर्मातीत अवस्था को पाया, तभी तो वो संपूर्ण बन गया, तो हम भी उस स्थिति को पाए। तो 17-18 जनवरी को एक बात तो हमने ये देखी कि पहले बाबा से जब भी मिला करते थे तो बाबा को हम बातें करते थे, बाबा ये सेवा है, ये मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, ऐसा ये, तो बाबा उसका जवाब दिया करता था, बताया करता था। लेकिन अंतिम दो दिनों में क्या देखा, जैसे ही ब्रह्मा बाबा के सम्मुख जाते थे बाबा दृष्टि देते थे, यूं थोड़ा बाबा ने दृष्टि दी, और दृष्टि देके अंदर के भाव बाबा समझ जाता था, और बाबा कहता था अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये है कौन सा लक्षण, मन जीते जगत जीत का। बाबा ने अपना मन इतना जीत लिया था, मन माने संकल्पों के ऊपर इतनी विजय प्राप्त कर ली थी कि जो संकल्प बाबा चाहता था वो पैदा ही वो संकल्प होता था जो सिद्ध होने वाला होता था संपूर्ण। अभी क्या मेरे 10 संकल्प पैदा होंगे, 1-2-3 कोई सिद्ध होंगे, बाकी व्यर्थ संकल्पों की काफी लाइन लग जाए, ये अगर ऐसा हुआ नहीं हुआ तो क्या होगा ऐसा, तो बस संकल्प सिद्धि का समय जो चल रहा है, तो बाबा को भी ना उस समय इतने हद तक मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, मन जीते जगत। जिसने अपना मन जीता होगा वो दूसरे के मन में भी क्या संकल्प चल रहा है उसे तुरंत पढ़ लेगा, नहीं तो क्या होगा कि अगर मेरे मन में किसी के प्रति कोई ऐसी इल फीलिंग है, किसी के प्रति कोई भावना है, तो व्यक्ति सामने आएगा तो उसके लिए वो भावना मिक्स हो जाएगी और हमारे मन में उसके लिए वैसे संकल्प पैदा होंगे जैसा हमारे अंदर बायसिंग है, उसके लिए कोई विचारधारा है। बहुत अच्छे विचारधारा से भी कोई व्यक्ति आ रहा है लेकिन मेरे मन में पूर्व घटनाओं के कारण अगर उसके लिए कोई ऐसी दुर्भावना टाइप है तो उसके जितने भी वो होंगे मेरे संकल्प मिक्स हो जाएंगे। तो ये मन जीते जगत जीत का, जगत जीत तभी हो सकते हैं। और उन दिनों में हमने देखा बाबा के सामने दो दिन में हम 6-7 बार गए, बाबा से मिले, कभी अपने पुरुषार्थ की बात पूछी, कभी बाबा से वहां आसाम में थे सेवा की बात पूछी, कई प्रकार के, लेकिन हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे बिल्कुल टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जैसे बात बताई ना, बाबा ने तुरंत उस बात को, मन की बात को पकड़ के उसको उसका समाधान कर दिया। तो एक लक्षण तो ये होगा, तो हमारा भी ये पुरुषार्थ होना चाहिए अगर सच्चे अर्थों में बाबा का राइट हैंड बनना चाहते हैं, कि बीच बीच में हम ना अपने को ये चेक करते चले कि कितने मेरे मन में व्यर्थ संकल्प होते हैं, और धीरे धीरे करके व्यर्थ संकल्प समाप्त होते जाए। व्यर्थ संकल्प क्या है, थोड़े दिन पहले गुलजार दादी ने क्लास कराया था बड़ा अच्छा यहाँ पर मधुबन वासियों का, तो उन्होंने कहा कि अभी बाबा ने भी कहा है अभी बच्चों के मन में विकारी संकल्प तो नहीं पैदा होते लेकिन व्यर्थ संकल्प पैदा होते हैं। तो व्यर्थ संकल्प की परिभाषा दादी ने जो दी वो ये दी कि वर्तमान समय के मुताबिक व्यर्थ संकल्प कौन सा है, जो संकल्प हमारी इच्छा के विरुद्ध चलता है वो भी व्यर्थ संकल्प है। फॉर एग्जाम्पल मानो अभी मैं याद करने बाबा को बैठा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी सूक्ष्म स्थिति हो जाए अव्यक्त फरिश्ता रूप, और जो पांच धाम की यात्रा है उधर ही मेरा बुद्धि रहे आदि आदि। और अगर बीच में कोई मानो सेवा का भी संकल्प आया, सेवा का संकल्प बुरा नहीं है, लेकिन मन में कोई पेंडिंग कार्य है यज्ञ का, सेंटर का, कोई भी सेवा का, और वो आ गया तो वो भी व्यर्थ संकल्प है आज के संदर्भ में। तो इस कारण से वो व्यर्थ संकल्प पर हमें खास ध्यान देना है कि जब हम याद में बैठे तो याद के ही संकल्प, जब रू रूहान करें उस समय रू रूहान की ही बातें हों, जिस स्थिति में हम स्थित होना चाहें उस स्थिति में स्थित हो, उसके अलावा अगर दूसरी स्थिति है वो भी व्यर्थ संकल्प। तो एक तो ये चेक करते चले साथ ही साथ। और हमने क्या देखा, बाबा ने ना 18 जनवरी की सुबह योग ही कराया, उस दिन क्लास नहीं कराई 18 जनवरी 69 में। और ईशु दादी जो नीचे रहती हैं अभी भी, वो बाबा की पीए शुरू से थी, सारे लेटर वही लिखते थे, सब बात हिसाब किताब यज्ञ का वही रखते थे। तो वो उन्होंने बाबा ने उन्हें बुलाकर कहा, बच्ची आज जितने भी पेंडिंग कार्य हों, बचे हुए कार्य हों रहे हुए, वो सब पूरे करा लो, कोई भी लेटर का जवाब देना बाबा को ना रह जाए। तो एक ये है कि इंट्यूशन बाबा को, इंट्यूशन कहें या कर्मातीत अवस्था के जब हम भी निकट होंगे ना, तो माइंड में बहुत क्लियर कट वो इंट्यूशन के रूप में या किसी रूप में विचार कि बस अब मैं चूंकि जाने वाला हूं, ये पेंडिंग काम है, ये मुझे पूरा करना है, नहीं तो अंत समय में वो कार्य, रहा हुआ कार्य जो है वो मुझे अपनी तरफ खींचेगा जो मैंने पूरा नहीं किया होगा। ऐसे कई कार्य होते हैं हमारे, आपके हमारे भी हैं, ये करना है कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो रहा हुआ कार्य अगर उसी के बीच में शरीर छूट जाए तो बस वो रहा हुआ कार्य जो अधूरा रह गया ना, वो हमें अंत समय अपनी तरफ उसके संकल्प खींचेंगे, और वो संकल्प लेके आत्मा चली जाएगी, और फिर अगले जन्म में भी उसका उसी रीति से उस चीज से कनेक्शन रहेगा, और वो तो अंत मत सोगति तो हुई नहीं। तो इस कारण से बाबा कहता है जितने भी पेंडिंग कार्य हो, किसी को विल बनानी हो, गृहस्थी का काम हो, कोई भी सेटिंग जो करनी है वो कर करा के पूरा करें, और अपने को देखें कि हाँ ये कार्य मुझे अगर रहा हुआ है तो ये कार्य मुझे लाइकली अंत समय अपनी तरफ खींच सकता है। इसीलिए रहे हुए कार्य ना वो सारे के सारे हमारे ऐसे पूरे किए हुए, ये ना सोचें कि अरे अभी तो मैं इतना रिलेटिवली यंग हूं, मैं कौन सा छोड़ के जाऊंगा, लेकिन अंत में तो सभी की, बाबा ने कहा सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अंतिम स्थिति है, जब अर्थक्वेक आता है तो वो देखता है क्या कि ये जवान है, इसको छोड़ जाऊं मैं, बूढ़ा है इसे ले जाऊं, नहीं, सुनामी आएगी, फ्लड आएगा, ये सब इसमें तो सारे आत्माएं उनका हिसाब किताब सबका चुकत होगा। तो एक ये तो बाबा का देखा उस दिन, तो उस दिन बाबा ने सारे पत्रों के जवाब दे दिए, और पूरा उसी दिन ही जो हमारा नक्की लेक के पास म्यूजियम है ना, वो बिल्डिंग का चल रहा था लेकिन तब तक बाबा ने क्लियर नहीं किया था, उसी दिन ही बाबा ने फाइल पर साइन करके अच्छा अब बच्ची ये बिल्डिंग ले लो और इसके द्वारा सेवा वो ये करा ली। तो इस तरह बाबा ने वो सारे के सारे कार्य, तो बाबा का राइट हैंड माने बाबा जैसे शिव बाबा का राइट हैंड बना, ऐसे हम भी बने कि कोई भी कार्य अंत समय तक बस कोई हमारा अधूरा ना रह जाए, जो हमारी बुद्धि को खींचता रहे। तो एक ये करा बाबा ने, और क्या किया साथ साथ बाबा ने ना, हमेशा रोज यहाँ मधुबन का नियम है, क्लास जो है रात का खाना वाना खाने के बाद 8:30-9 बजे रात्रि क्लास शुरू होता है। तो उस दिन बाबा ने ये बोला, जमुना प्रसाद भाई उन्हें बुला के, आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सबको बता दो। तो बाहर एक घंटा रहता था हिस्ट्री हॉल के बाद, तब ये तो हॉल था नहीं, हिस्ट्री हॉल ही था, उन्होंने बजाया घंटा, सबको इन्फॉर्म कर दिया आज बाबा क्लास जल्दी लेगा, सब भोजन करके या शाम को 7 बजे तक हिस्ट्री हॉल में आ जाए। सब भोजन करके, थोड़े ही लोग बाहर के थे, हम ही लोग थे, तीन चार लोग बस, बाकी तो मधुबनवासी थे। 18 जनवरी बहुत ठंडी का महीना था, तो बाबा उस दिन फिर क्लास में आए। और जब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी और जब बिल्कुल जो बाबा ने कहा है ना, अंतिम स्थिति ब्रह्म, क्योंकि हमारा टारगेट तो ब्रह्मा है ना, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट तो ब्रह्मा का नंबर वन रहा, तो ऐसे ही हमें देखना है हर चीज में हम ब्रह्मा बाबा के समान। उनकी जीवन कहानी में बहुत कहानियां लिखी हुई हैं बाद में, अनुभव वरिष्ठ भाइयों के, तो हमारी तो आंखों देखी ये स्थिति है। तो उस दिन शाम को सब क्लास में आए, ब्रह्मा बाबा आए। अब ब्रह्मा बाबा को कई बार खांसी भी बहुत आती थी, क्योंकि ओल्ड एज भी थी, ठंडी का महीना था, ठंडी के दिन थे, तो इन जनरल भी ओल्ड एज कफ होती थी। तो बाबा हंसी में कई बार शिव बाबा को कहते थे, बाबा ये जो मेरी सखी है ना, इससे मेरा पीछा छुड़ाओ, ये मुझे मेरे साथ ही साथ रहती है, ये मेरा साथ छोड़ती नहीं है। तो शिव बाबा क्या कहते थे, क्या कहते होंगे कई बार साकार मुरली में, है? है? ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, तो तुम्हें चुकतू करना ही है। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारे तन का आधार लिया तो मैं उसे नलीफाई कर दूंगा, नहीं, जो कर्म है वो तो तुम्हें चुकतू करने ही है हर एक को। अगर मैं तुम्हारा लिए कोई कंसेशन करूं, मेरे इतने सारे बच्चे हैं, सबका कंसेशन करना पड़े, ऐसा तो है नहीं। कर्मों का हिसाब किताब तो, जो पाप कर्म किए हैं और अगर मानो हम पुण्य कर्म कर रहे हैं तो पुण्य से वो नलीफाई हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये कई बार बाबा ने कहा, जो 63 जन्मों में और उससे भी ज्यादा जो इस जन्म में बाबा का बनने के बाद अगर कोई भी पाप कर्म हुआ है, उसका तो 100 गुना इकट्ठा हो गया माइनस ना। तो इस कारण से पाप कर्मों का फल तो यहां भुगतना ही है, भले हम योग करें, याद करें, उससे हमें अरे पुराने जन्मों के विकर्म भस्म होंगे, लेकिन ये जो खाता है, ये खाता ये नलीफाई नहीं होगा, यानी कि इतना कमा लिया तो इतना माइनस हो, ये नहीं, इसका तो हमें भुगतना ही पड़ेगा और इस शरीर के द्वारा। इस कारण से बाबा कहते हैं कि क्या करो, एक तरफ पुण्य का खाता तो वो जमा करो ही, लेकिन दूसरी तरफ ये अपने ऑडिट करते जाओ, देखते जाओ कि, क्योंकि पुराने जो विकर्म, कोई भी बात होती है ना, अगर पुराने यज्ञान में आने के बाद अगर कोई बात है तो वो हमारी कॉन्शियस बाइट करती है, हमारी अंतरात्मा धिक्कारती है, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान तो होता है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये ज्ञान के विपरीत है, लेकिन अगर हमारे पुराने संस्कारों के वशीभूत होने के कारण कोई भी बात ऐसी हो जाती है तो क्या होता है, अंतरात्मा अंदर ही अंदर बाइट करती है, कॉन्शियसनेस अंतरात्मा धिक्कारती है, ये नहीं होना चाहिए। चलो उसको हम जितना याद करेंगे योग बल से वो तो कम होता रहेगा उसका इम्प्रेशन, लेकिन जो विकर्म बन गए ना, वो विकर्म के लिए तो योग लगाना ही पड़ेगा और खाता कम करना ही पड़ेगा। वो नलीफाई पुराने निगेटिव एक तरफ जुड़ते रहते हैं, पॉजिटिव एक तरफ जुड़ते रहते हैं। तो पॉजिटिव से क्या होगा, सुदर्शन चक्र चलेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, तो बाबा कहता है और आगे के लिए क्लैरिफिकेशन होता रहेगा, लेकिन निगेटिव कर्मों का खाता वो संस्कार के रूप में, विकर्म के रूप में अपनी तरफ अगर खींचता है तो उसको ये बीज में देख करके उसके, उसको हम याद ना करें बार बार, ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, नहीं, बस देख करके और फिर हम अपना पॉजिटिव का खाता। इसीलिए बाबा कहता है योग बल से क्या होता है, आयु बढ़ती है, ये हमेशा बाबा का भी हा? जन्म पत्री में भी लिखा हुआ था, जीवन कहानी में लिखा हुआ था, हाथ की रेखाएं स्पष्ट रीति से बाबा का कहते थे कि भाई उनकी आयु 60 वर्ष है दादा लेखराज की। वास्तव में 60 वर्ष की आयु में दादा लेखराज तो जैसे खत्म हो गए, ब्रह्मा बाबा का जीवन, और ब्रह्मा बाबा ने योग लगा 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 के अपनी आयु, शरीर तो वही था ना दादा लेखराज वाला, उस आयु को 60 से 93 तक बाबा ले आए। तो देखो कितनी कमाल की बात है। तो इसीलिए हम सब भी चाहते हैं हमारी सबकी आयु बढ़े, और आयु बढ़ने का एक ही साधन है योग। ये ब्रह्मा बाबा को बीच बीच में बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी। कैसे कि थोड़ा भी समय मिलता था, हम लोग समझते हैं चलो जब योग का प्रोग्राम बनेगा भट्टी होगी, आधा घंटा एक घंटा दो घंटा योग करेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा को एक विशेष अभ्यास था। क्योंकि बाबा ने कहा, अव्यक्त बाप दादा ने, आपको याद होगा कि अभी बच्चों के सामने दो पेपर विशेष आएंगे। याद है कौन से दो पेपर? प्रकृति मतलब ये देह का, और पुराने, और एक बाबा ने कहा था परिवार का पेपर। परिवार का पेपर कैसे कि अब परिवार बढ़ता जा रहा है और परिवार के साथ राजधानी स्थापन हो रही है, तो बाबा ने कहा था चूंकि राजधानी स्थापन हो रही है इस कारण से हर बच्चे अपने अपने संस्कार अनुसार ज्ञान में चल रहे हैं, तो कोई तो ऐसे होंगे लास्ट सो फास्ट, अंत में आए धारणा इतनी पक्की करके एकदम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ते रहेंगे नए नए बच्चे भी, लेकिन कई पुराने बच्चे भी ऐसे होंगे धारणाओं में कमी होगी, कमजोरी होगी, और जब नए आने वाले बच्चे उन्हें देखेंगे, अरे ये तो 40 साल पुराने, इनमें भी अभी तक क्रोध का संस्कार, तो उनकी अपनी भी नींव कमजोर होने लगी। इसी प्रकार से क्रोध की बात होगी, कोई नाम रूप की बात होगी, कोई दूसरे खान पान की बात होगी, अरे ये इतने पुराने अभी भी ये बाहर का ये खा लेते हैं, अगर मैंने भी खाया तो क्या हुआ। तो उस रीति से वो दूसरों के प्रेरणा मूर्त बनने की बजाय उनको कमजोरी में गिराने के निमित्त बन जाएंगे। तो ये परिवार का पेपर अभी बहुत आएगा, और इससे विजय पाने के लिए बच्चों को क्या करना है, एक तो हरेक को के तीनों कालों को देखना है, उसका केवल हम वर्तमान न देखें जिसकी ये कमजोरी दिख रही है, बल्कि उसके तीनों कालों को देखें कि वर्तमान में ये इसका ये पार्ट है कमजोरी का, लेकिन ये वही आत्मा है जो सतयुग के आदि से लेकर चली है और ज्ञान मार्ग में, और वर्तमान में भले इसका ये पार्ट है लेकिन ये पार्ट भी अपने समय पर पूरा होगा। तो पहला तो हरेक को तीनों कालों की दृष्टि से देखें, किसी भी ब्राह्मण बच्चे को, और दूसरा ये भगवान की चुनी हुई आत्मा, भगवान ने इसे चुना है। बाबा ने कहा है कि मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है ना, वो आज के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट या राजा महाराजा से भी महान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की नजरों में आया, बाबा ने उसे चुना है। हम सब ने भगवान को नहीं ढूंढा, भगवान ने हमें चुना है। भगवान को तो हम द्वापर से ही ढूंढ रहे थे, तो भगवान ने नहीं चुना क्योंकि भगवान था ही नहीं धरा पर। जब भगवान धरा पर आया, उसने हमें देखा, तो उसने हमें चुना है। हाँ, ये ज्ञान के उपयुक्त आत्मा है, ये सतयुग में जाने वाली आत्मा है। तो हमेशा ये लाए, चाहे कमजोर आत्मा को देखें, ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है, और इसके आज भले इसमें ये कमजोरी का संस्कार दिख रहा है, लेकिन अपने समय पर ये बिल्कुल, क्योंकि भगवान ने चुना, और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। मनुष्य का सिलेक्शन गलत हो जाए, लेकिन हाँ, अपने लिए ताली बजाओ, क्या रखा है इसमें, भगवान ने मुझे चुना है ना अपने को, हाँ शाबाशी कि वाह वाह रे, मैं भगवान की नजरों में मैं आया, भगवान ने मुझे चुना है। तो एक ये, तो उस रीति से क्या होगा, अगर किसी में हम कोई कमजोरी भी देखेंगे ना, तीनों कालों की दृष्टि और भगवान के द्वारा चुनी हुई आत्मा, ये याद आएगा, कभी भी उस आत्मा के प्रति दुर्भावना नहीं होगी, और उसके वशीभूत होकर कभी हमारे अंदर वो कमजोरी का संस्कार जागृत नहीं होगा। तो एक ये परिवार का पेपर सबके सामने आएगा, और दूसरा बताया है अपने ये शरीर का पेपर। तो बाबा के सामने भी हम देखते थे, कोई आत्मा आती थी कोई भी, तो जब पार्टियां मिलती थी तो पार्टियों को मिलने का समय होता था, भाई 10 बजे दिल्ली की पार्टी, 10:30 बजे बम्बई, 11 बजे कलकत्ता, ऐसे पार्टी मिलेंगी। तो ब्राह्मणी जब आती थी ना, देखती थी हाँ बाबा की आंखें खुली हुई हैं, बिल्कुल बाबा मस्ती में लीन है एकदम। हाँ ब्राह्मणी सामने भी आ गई फिर भी बाबा का ध्यान नहीं, क्योंकि भले आंख खुली है लेकिन मन से तो बाबा कहीं और होता था। तो जब ब्राह्मणी कहती थी बाबा बाबा मैं फलानी पार्टी लाई हूँ, तो कई बार बाबा को जैसे जार, कोई ध्यान में नहीं होते थे लेकिन जैसे देह भान से न्यारे होते थे, और फिर अच्छा बच्ची लाए हो आओ पार्टी बुलाओ, आती थी पार्टी, बाबा मिलते थे और सबसे मिल मिला के, और फिर क्या होता था वो बस जब जाते थे ना फिर बाबा अशरीरी हो जाते थे। यानी कि शरीर का ये जो पेपर हम सबके सामने आएगा, इतना पेन होगा, दर्द होगा, कोई बुखार होगा, कोई बाबा को याद की बात तो दूसरी रही, वो कराना भी ना निकले हो जाना, तो क्या होगा इससे कि अगर हमें देह में आने का, जब चाहे हम देह में आए, जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाए, तो जब देह से न्यारे होंगे हम तो शरीर में जितनी भी वेदना होगी ना वो हमें महसूस नहीं होगी। अब बाबा ने ये अभ्यास इतना पक्का पहले से पक्का किया हुआ था, इस कारण से बाबा के ऑपरेशन भी हुए, तकलीफ भी हुई बहुत, जब लास्ट में हार्ट की भी प्रॉब्लम आई, वो सब कुछ, लेकिन फिर भी क्या करूं ऐसा ये सब नहीं, बाबा बस मैं आया कि आया अब आपके पास। तो उससे क्या होगा कि देह में आने का, जब चाहे हम देह में आए, जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाए, ये अभ्यास हमें देह में, देह का पेपर, ये दो पेपर में, इस पेपर में एकदम पास करा देगा। दादियों को भी हमने देखा, दादी भी जब होते थे ना तो दादियों के सामने डॉक्टर वगैरह जाते थे, दादी आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा, तो दादी कहती थी नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो डॉक्टर कहते नहीं दादी आप हम लोगों का दिल रखने के लिए बोल रही हो, कहते नहीं वाकई मैं बता रही हूँ, जब कभी कोई दर्द शुरू होता है बस मैं देह से न्यारी हो जाती हूँ, बाबा मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, न्यारी हूँ मैं आत्मा, बाबा भी जैसे बुद्धि से मुझे खींच लेता है और बस मैं न्यारी, फिर शरीर में जितना भी दर्द होता रहे, शरीर को जैसे एक तरह से एनेस्थीसिया दे दिया और आत्मा न्यारी हो गई, जितना भी पेन होता रहे महसूस ही नहीं होगा तो कराना कहां से। तो ये दो पेपर के लिए ये बाबा का अंतिम दिन भी देखा कि बस सारे पेपर बाबा को जैसे, और एक जो बाबा को खांसी आती थी मैं बता रहा था, तो खांसी के समय क्या होता था, बाबा कई बार ऐसा लगता था खांसते खांसते आंख में पानी भी जैसे बाबा के आ जाता था, हम लोगों को लग रहा होता था बाबा को जैसे बहुत तकलीफ हो रही है लग होता था, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा का पास में कृष्ण का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र ट्रांसलाइट का अभी भी हिस्ट्री हॉल में रखा है होता था, तो बस बाबा कहता था देखो बच्चे मुझे जब ये मेरी सखी आती है परेशान करती है ना खांसी, तो मैं क्या करता हूँ पता है, बस मैं एकदम वाह कल जाके मैं ऐसा मिचनू कृष्ण बनूंगा, और ये खांसी अभी आ रही है पुरानी देह है, पुराने तत्वों का बना शरीर है, सब कुछ तमो प्रधान है, और अब तो हम सतो प्रधान दुनिया में जा रहे हैं, वहां पर कोई खांसी नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई रोग शोक नहीं, किस दुनिया में बाबा ले जा रहा है। तो मानसिक रूप से बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र, कृष्ण का चित्र देख के कल जाके मैं तो ये कृष्ण बनूंगा, कोई व्याधि नहीं, तो बस बाबा वो पहुंच जाता था, तो खांसी रूपी जो परिस्थिति आती थी बाबा अपनी स्वस्थिति को मजबूत करके उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते। तो हम भी देखें अगर हमारे सामने कभी कोई संबंधों की परिस्थिति आती है, कोई धन की परिस्थिति आई है, कोई बात आई है, तो हम उस परिस्थिति को कैसे अपनी शक्तिशाली स्वस्थिति से अपने वश में कर ले, और इसके लिए हमें खुद ही विधि और युक्ति निकालनी होगी कि ये स्वस्थिति आई तो कैसे हम इस स्वस्थिति को शक्तिशाली बना के उस परिस्थिति को कैसे पार करें। तो एक ये बाबा का देखा, इसकी भी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। और बस इन सब के लिए हमें इंट्यूशन वाला द्वार जो है वो खोल के रखना है। और क्या था लास्ट में, हमने देखा कि बाबा को जैसे ये आभास तो हो गया था, तभी बाबा ने कहा जितना लेटर लिखवाने हो पत्र लिखवा लो कि अब मेरा अंतिम समय है, क्योंकि बाबा 18 जनवरी को क्लास करके निकले, बस खड़े हुए हैं, और खड़े होने के बाद बाबा घूमे दरवाजे की तरफ, एक कदम चले फिर खड़े हो गए, फिर बच्चों को एक एक को दृष्टि देने लगे बाबा, और एक एक को दृष्टि देके बस ये हो आज मैं बच्चों को जैसे शक्ति से संपन्न कर दूं। अपना दादी जी भी बैठे हुए थे, प्रकाशमणि दादी, बार बार बाबा की दृष्टि उनकी तरफ जाती थी, उनको देर तक ज्यादा समय तक दृष्टि देते थे, बस बाबा को तो मालूम था पीछे ये बच्ची संभालने वाली है। और ऐसे दो तीन बार बाबा रुके, फिर दरवाजे के पास जाके बाबा खड़े हुए और बच्चों को क्या कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये दो अक्षर अभी भी रिकॉर्डेड हैं। आप 18 जनवरी की सीडी यहां से लो, उसमें आप देखोगे बाबा की ये अक्षर, आधे घंटे की मुरली है, पूरे जीवन भर का सार है, वो यही ओम शांति भवन में नीचे मिलती है, लास्ट साकार मुरली। क्योंकि हमें भी ये अनुभव हुआ, हम भी सामने बैठे हुए थे, सामने बैठे बैठे हमारे मन में एक संकल्प आया, या संकल्प आया कि बस बाबा कुछ कहे हमारे लिए और पुरुषार्थ की कोई बात, तो बस देखो हमारे मन में संकल्प आया, और ब्रह्मा बाबा तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किए हुए थे। तो ये भगवान और भक्त का भक्ति मार्ग में जो लक्षण सुनते आ रहे हैं कि भक्त के मन में कोई इच्छा हुई भगवान बस तथास्तु कहके जैसे पूरी कर देता था, तो वो तो बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, ब्रह्मा और शिव बाबा लगभग समान बन चुके थे पूरा। और जो अक्सर देखा करते थे संदेशियां जब जाती थीं, पहले जाती थीं तो देखते थे दो ब्रह्मा बाबा देखते थे, एक ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बहुत तेजोमय, और दूसरा ब्रह्मा ये वाला अगर देखते थे तो वहां बाबा जब पूछता था बच्ची क्या अंतर है दोनों में, क्या बताते थे कि जो सूक्ष्म बतन वाला ब्रह्मा उसकी लाइट बहुत तेज है संपूर्ण, और बाबा का वही पुरुषार्थ का आधार था, बाबा अपने को बनाते गए। और अंत में हमें याद है 18 जनवरी को जब ना शरीर छोड़ा यहाँ पर, तो दादी ने बार बार, हाँ संदेशी दादी थी, उनको भेजा ऊपर, जाओ ऊपर देखो ये क्या है, बाबा कुछ ड्रामा की सीन दिखा रहा है या वास्तविकता है। ब्रह्मा डॉक्टर ने आके सर्टिफिकेट दे दिया कि अब ही इज नो मोर, वो नहीं है। तब जब संदेशी ने, पहले तो जा ही नहीं सकी वतन में, बाबा ने खींचा ही नहीं, जब 12-1 बजे गई रात को ध्यान में, तब बाबा ने दिखाया दोनों बिल्कुल एक समान लाइट में, जो जीवन भर नहीं दिखे, थोड़ा कम ज्यादा, लेकिन तब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन चुका था। तो संदेशी ने कहा, क्योंकि हम तो सारी रात जगे थे, तो मैं देखूं इधर देखूं इधर देखूं कौन से बाबा है, बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण कर्मातीत बन के सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा समान हो गए थे। तो उस दिन 18 जनवरी को भी हमारे मन में संकल्प आया, बाबा कुछ बोले और तुरंत बाबा तक पहुंचा, बाबा ने बस कुछ महावाक्य हमारा नाम लेकर उच्चार दिए, वो भी अभी तक गाइडिंग लाइट्स जैसे जीवन भर के लिए हमारे लिए बन गए। तो बाबा ने तो ये भक्ति मार्ग का चल, जब हम अपने भगवान की मूर्तियों के सामने जाकर के कोई संकल्प करते हैं और वो सिद्ध होता है हमारा, तो जब चैतन्य में भगवान आया हुआ और हम भगवान के बच्चे, हम ही तो दुनिया के इष्ट देव और इष्ट देवियां हैं, जो प्रजा बन रही है उनके हम इष्ट देव और इष्ट देवियां हैं, हमें उनके संकल्प पूर्ण करने हैं। जब हम चैतन्य में हैं तो हमें देखना है हमारे द्वारा उनकी पालना ऐसी हो कि वो बिल्कुल सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन का अनुभव करते चले। किसी भी आत्मा में हमारे व्यवहार के कारण, चरित्र के कारण, किसी भी कारण कोई प्रश्न उत्तर, प्रश्न की बात पैदा ना हो पाए, उनके लिए हम यही इष्ट देव बनेंगे, तभी तो वो हमारी मूर्तियों की जाकर के ना द्वापर युग से और पूजा करेंगे। लेकिन अभी हम जब यहाँ सम्मुख हैं तो चैतन्य में हमें उनकी पूरी पालना करनी है। तो ब्रह्मा बाबा उस दिन ना मुरली चला के उठ के बाहर आए, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये कह के बाबा कमरे में गए और दादी के हाथ में हाथ बाबा ने देह त्याग किया। लेकिन कमाल तो उसके बाद देखा कि बाबा का शरीर वो रखा रहा। हाँ, 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा था अर्ली नाइट में, लेकिन 18 की रात, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 का सारा आधा से ज्यादा, 2 बजे के बाद बाबा का संस्कार किया गया, लगभग 65 घंटे के बाद। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ रहा, कोई भी शरीर में दुर्गंध नहीं। मुझे याद है न कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया था, कुछ नहीं, लेकिन बाबा का शरीर वैसा चमकता रहा। और काफी हद तक, जो आजकल मेडिकल साइंस भी नहीं कह सकती, काफी हद तक बाबा के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। नहीं तो आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है, शरीर स्टिफ हो जाता है ना, स्टिफ हुआ, लेकिन काफी हद तक वो बिल्कुल एकदम स्टिफ नहीं हुआ। क्यों? ये है प्रकृति जीत का प्रतीक। 5 तत्वों के बने इस शरीर को भी बाबा ने इतना जीत लिया था कि अंत समय तक ये प्रकृति ने भी बाबा का पूरा साथ दिया। हम लोगों ने तो बाबा को स्नान कराया था और स्नान करा के फिर यहाँ पर शांति स्तंभ तक लाए, यहीं पर ही अग्नि संस्कार हुआ बाबा का। तो हमें माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना है, ये न भूले। हम माया जीत का तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, संकल्पों पर अटेंशन है, वृत्ति पर, सारी चीजों पर, लेकिन प्रकृति जीत पर हम कितना अटेंशन रख रहे हैं ये हमें खास देखना है। क्या मैं रोज प्रकृति के इन 5 तत्वों को भी योगदान करता हूँ, योगदान करती हूँ? एक एक तत्व के गुण हम अपने में धारण करते चले। वैसे ये सब्जेक्ट बड़ा है, लेकिन मैं जस्ट टच करता हूँ कि ये प्रकृति का हमारा अंत तब सफल होगा जब हम अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ेंगे। और इच्छा के अनुसार कब छोड़ेंगे? जब हमें मालूम होगा कि हाँ अब हम जाने वाले हैं, लेकिन हमारी अवस्था ऐसी होगी, अभी मालूम हो भाई कल शरीर छोड़ना है तो आज ही से ही प्राण निकल जाएंगे, डर पैदा हो जाएगा। लेकिन हमारी ऐसी अवस्था हो, हाँ बाबा आपके पास आए कि आए, और ये स्थिति रहे, और उसके लिए बस हम प्रकृति का ना तत्व का एक गुण धारण कर लें। कौन सा प्रकृति का गुण? अब देखो, अर्थ को एक बहुत आएगी तो धरती का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? सहनशीलता, उसके साथ साथ है दातापन का। धरती दाता है, एक बीज बो दो आप, पेड़ उगाएगा, हजारों बीज निकल आएंगे, फल हो जाएंगे धरती। ऐसे ही हमारे, हम अपने अंदर ना दातापन का अगर हमने गुण धारण किया होगा ना, दातापन का, तो क्या होगा कि बस कोई भी हमारे सम्मुख आए, हम उसे प्रेम, स्नेह, सहयोग, शांति का, इन चीजों में तो कोई खर्च होता नहीं, ये दान करते चलेंगे, दातापन की स्थिति धारण की होगी, तो कभी भी पृथ्वी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगी, विनाश का कारण नहीं बनेगी। तो धरती का ये गुण हम धारण करके धरती को अपना हम मित्र बना लें। जितना भी अर्थक्वेक आएगा, बहुत आएगा अंत समय तो, लेकिन ये एक तरफ होगा और हमारा वॉइसलेस कम्युनिकेशन बाबा के साथ होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पांव उधर बढ़ेंगे जहां बिल्कुल सेफ्टी होगी, जहां धरती का अर्थक्वेक हमारा विनाश, मृत्यु, दुख का कारण नहीं बन सकता। ऐसी जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? शीतलता। शीतलता के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी का। जल जो होता है ना, कितना फ्लेक्सिबल, कटोरी में लो, कटोरी में सेट हो जाएगा, गिलास में लो, गिलास में, चम्मच में लो, चम्मच में, कटोरी में लो, कटोरी में, थाली में लो, थाली में सेट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा नेचर भी जो हो ना एडजस्टेबल हो, इतना फ्लेक्सिबल हो हम हर आत्मा के साथ एडजस्ट होके चल सके, ये न कहें इस आत्मा के साथ तो एडजस्ट होना आसान है, उसके साथ तो भाई बड़ा मुश्किल है एडजस्ट होके चलना। नहीं, हर आत्मा के साथ हम एक बार दो बार एडजस्ट होके चलेंगे, देखना वो खुद एडजस्टेबल होके हमारे साथ आगे सदा चलता रहेगा। लेकिन इनिशिएशन, पहला कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस कारण से अगर जल का ये गुण एडजस्टमेंट का हमने धारण कर लिया तो क्या होगा, जितनी सुनामी आएगी, जितना फ्लड आए, पुर आए, कुछ भी होगा, ये जल हमारे विनाश का और मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। क्योंकि फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड कहा जाता है ना, आवश्यकता के समय मित्र मित्र की सहायता करता है। तो जल को मित्र बना लिया, जल हमारी सहायता करेगा, वो हमेशा ऐसा टचिंग हो गई, राइट टचिंग एट राइट टाइम, जो प्रैक्टिकल भी देखा आंध्रा, बहुत सारे उदाहरण है, लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी समय के अभाव में वो नहीं बता सकते। तो एक ये बात हो गया, जल का ये गुण हो गया। और अग्नि का क्या गुण है, अग्नि का प्रभाव मतलब सूर्य के रूप में अग्नि है ना, तो अग्नि का क्या विशेष गुण है, हाँ, हर चीज को का रूप परिवर्तन कर देती है। अग्नि में डालो, हमारा भी ऐसा ज्वालामुखी योग हो, बाबा कहता है हाँ वॉयल जो ऐसा योग जो आत्मा आए हमारे सम्मुख और उनका रूप परिवर्तन हो जाए, रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए सुख की अथाह अनुभूति करे और सुख सागर में लहराती हुई चली जाए। उसका रूप परिवर्तन होगा, वो कब होगा, जब हमने अपना ज्वालामुखी रूप धारण किया होगा। और सारा दिन भर में हमारा भी चेहरा हाँ सूर्य की तरफ होगा तो परछाई पीछे पड़ती है, तो माया हाँ रूपी परछाई छाया वो पीछे रहेगी अगर हमारा मुख शिव बाबा रूपी सूर्य की तरफ रहा, और अगर उल्टे हो गए शिव बाबा की तरफ पीठ हो गई तो छाया यानी माया यानी हमारी कमजोरियां वो हमें गाइड करती रहेंगी आगे चलती रहेंगी। तो इसीलिए अग्नि का ये रूप धारण करें। वायु का क्या गुण होता है, वायु एकदम हल्की हल्की होती है, तो ऐसे हम भी इतने हल्के रहें, हर परिस्थिति में हम हल्के होकर चलते रहे, भारी ना। पृथ्वी देखो हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर ले जाती है, फिर भी दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, पृथ्वी और वायु विपरीत गुण हैं, फिर भी साथ साथ चलते हैं। तो इस रीति से एक हमें ये करना है, वायु की तरह हर परिस्थिति में हल्के रहें, भारी न हो, तो अंत समय में जितने भी साइक्लोन आएंगे वो साइक्लोन हमें हमारे विनाश का कारण मृत्यु का कारण नहीं बन सकते। ये तो मैं एक गुण टच कर रहा हूं। लास्ट में आकाश का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, विशालता। उसका भाव क्या है, हमारे हृदय में भी ऐसी विशालता हो कि हम किस जिसको देखें उसको उसकी कमी कमजोरी में क्षमा करते चले। जो महान आत्माएं होती हैं उनका सबसे बड़ा गुण क्षमा का होता है। तो बस इस तरीके से इन प्रकृति जीत भी हम जितना जितना बनते जाएंगे ना, वो प्रकृति जीत हमें अंत समय में ये बहुत बहुत सहयोग देगा। देखो नौकरी करते हैं ना, जॉब करते हैं, तो बाद में रिटायरमेंट होने के बाद सब चीज पैसे मिलने का आधार क्या होता है, पेंशन हो, ग्रेजुएटी हो, कुछ भी चीज हो, उसका आधार क्या होता है, जो आपने लास्ट तनख्वाह ड्रॉ की है, लास्ट पे सर्टिफिकेट, ऐसा होता है ना, उसके आधार पर ही सब कैलकुलेट होता है। ऐसे ही लास्ट ब्रीथ हमारी जो हुई है वो कैसी थी, उसमें वस्तु व्यक्ति वैभव किसका समावेश था, उसके आधार पर ही हमारे जन्म जन्मांतर की कैलकुलेशन होती है। तो इसीलिए हमारा जितना पुरुषार्थ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि अंत समय में हमारी ऐसी स्थिति, और अंत समय में वो स्थिति कैसी होगी, जैसी हमारी लंबे काल तक यहां स्थिति रही है वही अंत समय होगी। लंबे काल तक तो हमने बाबा को याद नहीं किया, अंत काल में बाबा याद आएगा क्या? नहीं आएगा। इस कारण से हर चीज का प्रैक्टिकल अभ्यास चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा को ना हर चीज में हम फॉलो करते चलेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल राइट हैंड भी बाबा के बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली आज्ञाकारी होते जाएंगे, बाबा के कदम में कदम रखते हुए चले। बाबा ने कहा था है ना, ब्रह्मचारी तो सब बन गए, अब क्या बनना है, हाँ ब्रह्माचारी, ब्रह्मा के कदम पे कदम। ये ना सोचे ब्रह्मा बाबा को तो हमने देखा नहीं, नहीं, ब्रह्मा के कदम पे कदम चल के दादियां बनी ऐसी, दादियों का वर्तमान में फॉलो कर। अभी हम पूना गए हुए थे, पूना से आए तो अहमदाबाद होते हुए आए, दादी जानकी हॉस्पिटल में थे, बहुत उनके दर्द है, डॉक्टर भी बहुत कह रहा था और दादी भी थे वहाँ। कई बार जब ना एकदम ऐसी वो भासना आती कि दादी को बहुत दर्द है, और हंसा बहन बता भी रही थी बहुत बहुत दर्द है, इंजेक्शन भी वगैरह दे रहे हैं लेकिन नॉर्मल इंजेक्शन से नहीं, तो परसों एक इंजेक्शन और भी चेंज किया था, उससे थोड़ी रिलीफ हुई थी। तो ऐसी स्थिति भी हो ना, लेकिन हमारी स्थिति जो है उसमें बिल्कुल तो ठीक है। इस तरह बाबा के कदम में कदम रखते हुए हम सब लोग बाबा के राइट हैंड में। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। मोहन भाई जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से बाबा का हम राइट हैंड कैसे बने उसके लिए जो बातें बताई, एक तो है हम तो हमें व्यर्थ मुक्त बनना है, सबसे प्रथम बात तो वही है। और व्यर्थ की भी डेफिनेशन जो है बहुत ही गहन रूप में, सूक्ष्म रूप में बताई, और साथ में हमारा हमारी जो हार्मनी है, हमारा जो प्यार है वो सबके प्रति होना चाहिए, और हर एक से हम गुण उठाते जाए, जिसे दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं कि 24 गुरु की है, तो हमें तो बहुत सारे गुरु करना पड़े, ऐसे बहुत सारे के पास से हम गुण उठाते जाए, वो प्रकृति से भी कैसे गुण उठाए वो भी बहुत सरल रूप में हमारे समक्ष रख के हम अब फिर से भाई जी का अभिवादन करेंगे, थैंक्स देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।